इंसान की लाइफ सिर्फ दो ही दिशाओं में जा सकती है, यानी या तो हमारी लाइफ बेटर बन सकती है या फिर वर्स। हर दिन या तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होते हैं या फिर नाकामयाबी की तरफ। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी सक्सेस भी चखनी है और आपको ज्यादा फेलियर भी नहीं देखना, तो आप एक ऐसे ग्रुप का पार्ट बन सकते हो जिसे बोला जाता है मीडियोकर या फिर एवरेज। सोसाइटी में हम इस ग्रुप को मिडिल क्लास भी बोलते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ना ही आप इधर के हो और ना ही आप उधर के हो, ना ही आप अमीर हो और ना ही गरीब। और सोचो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए कितना कंफ्यूजिंग होता है कि उसकी एक्चुअल सोशल स्टैंडिंग है क्या। जैसे मेरे बचपन में मेरे पापा ने एक रेस्टोरेंट खोला था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत चला वो, और हर कोई जानता था कि वो मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। जैसे तैसे करके हमने अपनी किस्मत को खींच के एक सेकेंड हैंड कार ली और बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। बट धीरे धीरे बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया और हमें उस बिजनेस को बंद करना पड़ा। उसके बाद पापा ने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करा और वो भी शुरू में काफी प्रॉमिसिंग था। काफी सारी पापा ने बिल्डिंग्स बनाई, काफी सारे घर बनाए। इवन जिस स्कूल में मैं बड़ा हुआ था, जिस स्कूल में मैंने स्टडी किया था, उसमें भी पापा ने बहुत सारा काम किया। बट अगेन सेम थिंग हैपेंड, लॉसेस होने लगे और पापा को उस बिजनेस को भी बंद करना पड़ा। उसके बाद हमने कैब्स का बिजनेस शुरू किया, जैसे ओला उबर होते हैं, हमारे पास ऐसे 6-7-8 ऐसे कुछ कैब्स थी और शुरू में वो भी काफी प्रॉफिटेबल था। लेकिन फिर ओला उबर के कुछ रूल्स चेंज हुए और ड्राइवर्स ये करने लगे थे कि जब भी उनके पास कोई राइड आती थी तब वो राइड को कैंसिल करके उनको बिठा तो लेते थे और उनसे पैसे भी ले लेते थे, बट हमें ऐसा शो होता था कि राइड बैठी ही नहीं है और ना तो हमें कमीशन मिलती है और ना ही ओला और उबर को। तो इस वजह से वहां पर भी लॉस होने लगा और हमें उस बिजनेस को भी बंद करना पड़ा। यानी हमारी लाइफ में कोई ऐसा पैटर्न चल रहा था जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा था। और हम यहाँ पर बिजनेसेस को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज तब से लेकर अब तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं और वो प्रॉफिटेबल हैं। तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। और तब से लेकर अब तक भी बहुत सारे लोग कैब्स का बिजनेस कर रहे हैं और वो कमा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ एनी रूल्स चेंज और व्हाटएवर। कोई और चीज़ थी जो हमें रोक रही थी। पापा को हमेशा शुरू से ये समझाया गया था कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए तो वो आपको मिलेगा हार्ड वर्क से। जिस वजह से मैंने अपने पूरे बचपन में यही देखा कि कभी एक काम खुल रहा है, कभी एक काम बंद हो रहा है। पापा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, और जितने भी लोगों को मैं जानता था, जितने भी हमारे रिलेटिव्स थे और जितने भी मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स थे, उनमें सबसे ज़्यादा अपने काम को टाइम देते हुए मैंने अपने पापा को ही देखा। और मैंने ये भी देखा कि करोड़ों रुपये हमारे घर से होकर चले गए बट हम कुछ बिल्ड ही नहीं कर पाए। इतना टाइम हो गया और हमारे से लोग आगे निकल गए बट वी हैड नथिंग टू शो फॉर। ऐसा इसलिए बिकॉज मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने के लिए सिर्फ हार्डवर्क काफ़ी नहीं होता, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को बस यही समझाया जाता है कि काम करने से नाम होता है। हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि एसेट्स कैसे बिल्ड करने होते हैं, थोड़े से पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा कैसे बनाते हैं या फिर चलाक कैसे होते हैं। और अगर कोई इंसान अपना थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करके ये फाइंड आउट करने की भी कोशिश करे कि उसकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो उसके आसपास के मीडियोकर लोग उसे चुप करा देते हैं और ये बोलते हैं कि तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, जितना तेरे पास है तू उसी में खुश रहा। लेकिन ये एक गलत टीचिंग है। इससे बेटर टीचिंग ये होनी चाहिए कि चीज़ों का और खुशी का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, और हमें इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को अपनी सब्जेक्टिव बायसेस के थ्रू देखना बंद करना चाहिए। और अब जब इतने सालों बाद हम बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि क्यों हमारे इतने सारे बिजनेसेस फेल हुए, तो हम ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे लाइफ और पैसों को लेकर कितने सारे लिमिटिंग बिलीव्स थे। मेरे पापा ने अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ एस्टीम को जोड़ रखा था पैसों और चीज़ों के साथ, बिकॉज जिस एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए थे और जिस तरह की उनकी फैमिली थी, उन्होंने उनके मन में ये डाल रखा था कि अगर उनको दूसरों का प्यार, दूसरों की एक्सेप्टेंस और दूसरों की अप्रिसिएशन चाहिए तो उनको खुद को मटेरियली प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। यानी उनके हार्डवर्क करने का रीजन था कि वो दूसरों से एक्सेप्टेड फील करना चाहते थे। उनके हार्डवर्क करने का रीजन ये नहीं था कि वो अपने पर्पस पर काम कर रहे थे या फिर वो ये देखना चाहते थे कि उनकी पोटेंशियल कितनी है। ही जस्ट वॉन्टेड टू फील एक्सेप्टेड एंड लव्ड बाय हिज फैमिली। और इसी तरह से जब हमारे अंदर लाइफ और पैसों को लेकर लिमिटिंग बिलीफ्स बैठे हुए होते हैं, तब हमारा फेलियर गारंटीड होता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक बुक है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा डर खुद को अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट करता है, और सबसे कॉमन तरीका जिसके थ्रू हमारा डर खुद को जाहिर करता है वो होता है हमारी आइडेंटिफिकेशन। यानी हम खुद को बांध लेते हैं अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपनी फैमिली, अपनी नॉलेज, अपनी इनकम या फिर हर कोई ऐसी चीज से जो हमें सच से बचाती है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं हूँ एक हिंदू, क्रिश्चियन, जू, मुस्लिम, मैं इस घर से बिलोंग करता हूँ, मेरी कास्ट ये है, मेरी कंट्री ये है, मेरा कल्चर ऐसा है, और फिर मैं अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने फैमिली, इन सब के बिलीफ्स बोरो कर सकता हूँ ताकि मेरे को खुद सच का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे को पता ही नहीं है कि इन बिलीफ्स में क्या मिलावट हुई है और इनमें से क्या सच है और क्या झूठ है। यानी दुनिया के बहुत से लोग रियलिटी की हार्शनेस से बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, और इसी बंधन के साथ फिर वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे आइडियाज, दूसरे लोगों और चीजों के लिए जीने लगते हैं। और जो भी इंसान ये बोलता है कि उसे टॉप पर नहीं पहुंचना या फिर एक मीडियोकर लाइफ को जीने में क्या ही प्रॉब्लम है, ऐसे लोग भी डर की वजह से लाइफ को खुलकर जीने से इतराते हैं और ये अपने डर को जस्टिफाई करते हैं अपने किसी लिमिटिंग बिलीफ के साथ। जैसे किसी इंसान का लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है कि मैं क्यों ही कोई काम करूं, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी कर लूं लोग मेरे से खुश ही नहीं होते हैं। ये एक बहुत कॉमन लिमिटिंग बिलीफ होता है। या फिर किसी इंसान का लिमिटिंग बिलीफ ये हो सकता है कि दुनिया में जो कोई भी इंसान कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है उसके पास शुरू से वो प्रिविलेजेस और वो एडवांटेजेस थी जो मेरे पास नहीं थी। लेकिन अगर आपका कोई भी बिलीफ आपको ये बोलता है कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो या फिर आप खुद को मीडियोक्रिटी की तरफ जाने से रोककर खुद को ग्रेटनेस की तरफ नहीं मोड़ सकते तो वो एक लिमिटिंग बिलीफ है। और सच बताऊं तो इक्वालिटी की बातें भी लिमिटिंग बिलीफ ही होती हैं। ऑफ कोर्स हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हमें हर इंसान को एक बेस लेवल पर रिस्पेक्ट देनी चाहिए बिकॉज हर इंसान किसी न किसी चीज़ से गुजर रहा होता है और हमें उनकी इंसानियत को एक्नॉलेज करना आना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल, जो बोलता है कि 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेज। यानी हम एक ग्रुप को जितना भी इक्वल बनाने की कोशिश कर लें लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ उनमें से सिर्फ 20% लोग ऐसे निकलते हैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें इस डिसप्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन का एक डिसप्रोपोर्शनेट रिवॉर्ड मिलता है। इसी वजह से तो हम बोलते हैं द रिच कीप्स गेटिंग रिचर एंड द पुअर कीप्स गेटिंग पुअरर। और आपको ये चीज़ फेयर या फिर अनफेयर लग सकती है डिपेंडिंग ऑन योर बिलीव्स, लेकिन रियलिटी हर किसी को सेम रूल्स देती है। और आपको ये बात पहले से ही पता है, कितने सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं लेकिन उनमें से कुछ स्टार्टअप्स ही ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। हजारों लाखों लोग किसी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं लेकिन उनमें से गिने चुने लोग ही ऐसे होते हैं जो उस टेस्ट में सिलेक्ट हो पाते हैं। जब आप अपनी अलमारी खोलते हो तब इतने सारे कपड़ों में से सिर्फ 20% ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें आप 80% ऑफ द टाइम पहनते हो। इवन जब आप एक रेस्टोरेंट में भी जाते हो तब 80% वहां पर जो ऑर्डर्स होते हैं वो आते हैं 20% मेन्यू आइटम से। यहां तक कि जब एक माली बहुत सारे बीज बोता है तब उनमें भी 80% ऑफ द हेल्दीएस्ट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कम फ्रॉम 20% ऑफ द सीड्स। हमारे एक रीसेंट एपिसोड में भी हमने 80-20 रूल के बारे में बात करी थी डेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, कि कैसे किसी भी डेटिंग ऐप पर 20% ऑफ द मेन गेट 80% ऑफ द वुमेन और बाकी बचे हुए मेल्स को फीमेल्स की कोई अटेंशन नहीं मिलती। और आप ये सोच सकते हो मे बी ये कैपिटलिज्म की वजह से है या फिर ये कोई मॉडर्न फिनोमिनन है, लेकिन अगर हम हजारों सालों पुरानी ग्रेव साइट्स पर जाएं और वहां पर जाकर लोगों की कब्रें खोदें, और ऐसा हुआ भी है, तो वहां पर 20% कब्रें ऐसी होती हैं जिनमें हमें सोने की बनी हुई चीजें और बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलते हैं, लेकिन बाकी 80% कब्रें जो होती हैं उनमें बस लोगों के कंकाल मिलते हैं। मीडियोकर लोग बोलते हैं कि सक्सेस क्यों ही मैटर करती है जब हर किसी ने एक दिन मर जाना है, लेकिन यहां पर उनकी दो अजम्पशंस गलत हैं। पहली चीज ये कि इट्स नॉट अबाउट हाउ यू डाई, इट्स अबाउट हाउ यू लिव। लेकिन अगर हम डेथ की भी बात करें तो एक टॉप के इंसान की डेथ भी एक मीडियोकर इंसान की डेथ के इक्वल नहीं होती। नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे फ्यूनरल पर, मेरी अंतिम क्रिया पर कोई ना आए तो भी, क्योंकि मैं तो मर चुका हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि कौन रो रहा है या फिर कौन खुश है। लेकिन उनमें इतनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती कि वो ये समझ पाए कि जितने लोग आपकी डेथ से इन्फ्लुएंस होते हैं वो ये बताता है कि आपने लाइफ कैसी जी और आपने जीते जी कितने लोगों को पॉजिटिवली इंपैक्ट करा। हर मीडियोकर इंसान की आंखों को उसके लिमिटिंग बिलीव्स बंद करे रखते हैं और उनकी आंखें तब तक नहीं खुलती जब तक उनकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट नहीं आ जाता जो उन्हें कोई बड़ा शॉक देकर उन्हें उनकी नींद से नहीं जगा देता। ऑथर एमजे डिमार्को अपनी बुक अनस्क्रिप्टेड में इस तरह के चेंज को बोलते हैं फक दिस इवेंट, FTE, यानी वो मोमेंट जब आप अपनी मीडियोक्रिटी से पूरी तरह से परेशान हो जाते हो और आप बोलते हो कि मैं इस तरह जिंदगी नहीं जी सकता। मेरी लाइफ में FTE तब आया था जब मैं कॉलेज में था। मैं BBA कर रहा था, थर्ड ईयर चल रहा था और लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे थे। जो मेरा एग्जामिनेशन हॉल था वो था रोहिणी में, यानी फरीदाबाद से लेकर रोहिणी तक आप ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा ड्राइव करके जाते हो, आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो, आप ऑलरेडी थक चुके हो। और उस दिन आई गेस अकाउंट्स का पेपर था, एग्जाम को शुरू हुए 1.5 घंटा हो चुका था और जितना मेरे को आता था मैं लिख रहा था, बट एकदम से इन्विजिलेटर आता है और वो मेरे से मेरी आंसर शीट लेकर चला जाता है और मैं एक्चुअल में शॉक में हूँ कि मैंने किया क्या है, बिकॉज ना तो मैं किसी को चीट करा रहा हूँ, ना मैं किसी से चीट कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ सर व्हाट हैपेंड, मैंने क्या किया है। तो मेरे को बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर पे आपने कुछ बनाए हुए हैं फिर कैलकुलेशन किए हुए हैं, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए एंड दिस इज अ रूल। और वो बिल्कुल स्टूपिड चीज़ है, कोई वहाँ पर पता नहीं मैंने सिग्नेचर किया हुआ है या फिर कोई स्क्विगल है, कुछ मीनिंगलेस सा है जिसको इजीली इग्नोर करा जा सकता है। और उस टाइम पर मेरा टेम्परमेंट जो था मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बट उस मोमेंट में मैं बहुत शांत था और मैं डिटैच होकर एक्चुअल में खुद से ये क्वेश्चन कर रहा था कि क्या एक्चुअल में मेरी किस्मत इस इंसान के हाथ में है। आप बोल सकते हो कि बट नहीं सौरभ, अ रूल इज अ रूल, अगर तू कहीं पे है और वहां का रूल कुछ है तो उसको फॉलो करना चाहिए, बट कई रूल्स गलत भी होते हैं और जो लोग उन गलत रूल्स को फॉलो करते हैं बिना उन्हें क्वेश्चन करे वो लोग भी गलत होते हैं। और इस इंसिडेंट से पहले कई महीनों से मैं घर में ये बोल रहा था कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को ड्रॉप करना है। बट घर में हर कोई मेरी बात को टाल रहा था बिकॉज वो ये सोच रहे थे कि मैं कोई एक्सक्यूज बना रहा हूँ। लेकिन जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, मैंने बोला हर चीज़ भाड़ में जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे क्लासमेट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे पता है मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जो मेन स्ट्रीम एडवाइस होती है वो सोसाइटी के स्लोएस्ट मेंबर्स के लिए बनी होती है। सड़क पर भी जो स्पीड लिमिट होती है वो बेस्ट ड्राइवर्स को दिमाग में रखकर नहीं डिसाइड करी जाती है, स्पीड लिमिट डिसाइड होती है ये सोचकर कि अगर कोई बुरा सा बुरा ड्राइवर भी है तो उसके लिए भी इतनी स्पीड ठीक है। जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी थी, जिस तरह की मेरी सोच थी और जो मेरा एटीट्यूड था अथॉरिटी की तरफ, यानी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब भी मेरे को कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता था, तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरे को शुरू से पता था कि ना ही मैं स्कूल के लिए बनाऊं, ना ही मैं कॉलेज के लिए बनाऊं और ना ही मैं किसी जॉब के लिए बनाऊं। और ये कोई मैं अपनी ईगो से नहीं बोल रहा कि देखो मैं कितना सुपीरियर हूं। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी उसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं जो आपको आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स या फिर आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको दिया है, और वो आपको बोल रहे हैं कि बस ये सारे काम कर लो और चाहे तुम बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी हो तब भी तुम्हारी लाइफ ठीक ठाक निकल जाएगी। लेकिन आपको एक ठीक ठाक जिंदगी नहीं जीनी है। आप में से बहुत से लोग इसी वजह से अपनी लाइफ को हेट करते हैं, लेकिन आप अभी तक अपनी मीडियोक्रिटी के पैथ से हट नहीं पाए हो बिकॉज आपको यही नहीं पता कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर ये नहीं तो क्या? मेनस्ट्रीम एडवाइस कभी भी आपकी इनकम लेवल पर फोकस नहीं करती। वो आपको बोलती है कि आप चाहे जितना मर्जी कमाते हो उसका एक पोर्शन इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दो और 30 से 40 साल के बाद आप एक करोड़पति हो गए। हाउ क्यूट। रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया कि सर मेरी 20,000 की सैलरी है तो इसमें ये बताओ कि मैं अमीर कैसे बनूं। और वो कमेंट पढ़ के एक्चुअल में मेरे को काफ़ी बुरा लगा बिकॉज आजकल के फाइनेंस यूट्यूबर्स यही कर रहे हैं। वो आपको सीधा सीधा ठोक कर ये नहीं बता रहे कि आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, आपको हाई इनकम स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, बिकॉज ये जो टॉपिक होता है, ये एडवाइस होती है, बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। लोग ये नहीं सुनना चाहते, लोग ये सुनना चाहते कि मैं बिना कुछ करे पैसिवली पैसा कैसे कमाऊं। बिकॉज ज्यादातर लोग लेजी हैं, वो किसी भी तरह के दर्द को नहीं सहना चाहते और वो कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैंने ये रियलाइज किया कि जब भी आप अपने व्यूअर्स की बायसेज और उनके जो भी फ्लॉज है उन्हें कन्फर्म कर देते हो कि आपकी जो भी कमी है चाहे उसे आप इंप्रूव भी कर सकते हो और जो भी आपकी बायसेज हैं वो सही हैं चाहे वो झूठी भी हों, तब इससे आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और अगर आपका एक व्यूअर एक बार आपको सपोर्ट करता है, उसको आपकी बात अच्छी लगी, तो वो अगली वीडियो भी देखता है और उसकी अगली वीडियो भी देखता है, और इस तरीके से आपका मोमेंटम बन जाता है, आपके व्यूज़ बढ़ने लगते हैं, आपका चैनल नई ऑडियंस तक जाने लगता है, आपके पास नए स्पॉन्सर्स आने लगते हैं और आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। बट अगर आप खुद लॉजिकली इसके बारे में सोचो कि अगर आपकी इनकम ऑलरेडी काफ़ी कम है तो आप उसे इन्वेस्ट करके और उसे कंपाउंड करके क्या ही कर लोगे। 1,000 times नथिंग इज स्टिल नथिंग। और ये जो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस है जो हर कोई आपको आजकल इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, ये इसलिए है बिकॉज मार्केट में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट ऐप्स और वेबसाइट्स आ चुकी हैं और उन्हें उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है। अगर मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं तो वैसे तो मैं ज़्यादा स्पॉन्सर्स लेना प्रेफर नहीं करता, लेकिन जिस इन्फ्लुएंसर एजेंसी के साथ मैं पहले काम कर रहा था उसने मेरे को ये एडवाइस दिया था कि मैं अपना चैनल धीरे धीरे फाइनेंस की तरफ मोड़ लूँ बिकॉज फाइनेंस में ज़्यादा पैसा है। और यही रीज़न है कि क्यों इतने सारे जो सेल्फ हेल्प यूट्यूबर्स हैं जिनकी ये नीश भी नहीं है वो आपको इन्वेस्टमेंट 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 यही करे जा रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर लो उस ऐप को डाउनलोड कर लो बिकॉज उसमें ज़्यादा पैसा है। और ये रास्ता जो होता है जो कंटेंट क्रिएटर्स ये बोलते हैं जो बिक जाते हैं बेसिकली, ये रास्ता भी मीडियोक्रिटी का ही है। आपको दिख रहा होगा कि मे बी उनके पास ज़्यादा पैसा तो वो फ्री हैं, लेकिन वो भी बंधे हुए हैं, वो बंधे हुए हैं अपने डर से। और ये लाइफ बहुत बेकार लाइफ होती है जहाँ पर आप फियर में होते हो, जहाँ पर आपके पास कोई मोरालिटी नहीं होती, जहाँ पर आपके पास कोई पर्पस नहीं होता। मीडियोक्रिटी का रास्ता जो होता है वो डिफेंस से भरा हुआ होता है। अगर आपने कभी बॉक्सिंग देखा हो तो बॉक्सिंग में दो मेजर टेक्निक्स होते हैं, पहला होता है ऑफेंस और दूसरा होता है डिफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है कि मैं दूसरे को पंच मार रहा हूं और ऐसे में जीतने की कोशिश कर रहा हूं, और डिफेंस होता है कि सामने वाला पंच मार रहा है और मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं। और डिफेंस के दो बेनिफिट्स होते हैं, पहला ये जब सामने वाला मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं उसके हर पंच से बच पा रहा हूं तब वो मेरे को कोई डैमेज ही नहीं दे पा रहा। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब सामने वाला मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका हर वार मिस हो रहा है तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मीडियोक्रिटी का रास्ता इन दोनों टेक्निक्स में से बस एक टेक्निक पर फोकस करता है और वो होता है डिफेंस। यानी एक मीडियोकर इंसान बचत पर फोकस करता है, वो कभी भी लाइफ को चैलेंज करके उसके साथ दो दो हाथ नहीं करते, बल्कि वो लाइफ से डरते हैं और वो कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं। वो लाइफ को ये नहीं बोलते कि सक्सेस मेरा हक है और चाहे जो भी हो जाए मैं सक्सेसफुल बनूंगा, बल्कि वो लाइफ से बुली हो जाते हैं और जो कुछ भी बची कुछ चीज़ लाइफ उनकी तरफ फेंक कर चली जाती है वो उसे पकड़ कर बोलते हैं कि एटलीस्ट हमें इतना तो मिला, हमें खुश नसीब होना चाहिए। जैसे वो कहावत होती है ना कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, या फिर बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आप खुद को ही कुछ नहीं समझते और आपके दिमाग में ये बिलीफ बहुत डीपली जाकर गड़ा हुआ है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा और जितना मैं ट्राई कर लूं मैं मीडियोक्रिटी से फिर भी नहीं निकल पाऊंगा, तो ऑब्वियसली आप घुमा फिरा कर मीडियोक्रिटी में ही सेटल कर लोगे। और इसी तरह के वो लोग होते हैं जो लाइफ में आगे चलकर रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने क्यों सेटल कर लिया, और फिर आउट ऑफ देयर रिग्रेट वो आपको एडवाइस करते हैं कि बेटा अपनी लाइफ में ये करो, अपनी लाइफ में वो करो। लेकिन सोचो, क्या आप ऐसे इंसान से कोई भी एडवाइस लेना चाहोगे जिसके बारे में हर चीज़ एवरेज है? यानी उसने एक एवरेज जिंदगी जी, उसके फ्रेंड्स एवरेज हैं, उसकी पार्टनर एवरेज है, उसकी पूरी फैमिली एवरेज है, वो एवरेज बोलता है, एवरेज सोचता है, उसकी इनकम भी एवरेज है, और यहाँ तक कि उसकी हेल्थ भी एवरेज है। तो ऐसे इंसान की कोई भी एडवाइस जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे, क्या आपको लगता है कि आप अपनी एवरेजनेस से ज़रा सा भी बाहर निकल पाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप खुद को मीडियोक्रिटी से बाहर निकालने का यही होना चाहिए कि आपको खुद के हर लिमिटिंग बिलीफ को अनलर्न करना है। कोई भी इंडियन पैदा होने पर ये नहीं बोलने लग जाता कि उसे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब इज द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से, लेकिन हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी हमें वही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस की। अगर उन्होंने ये देखा कि कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनकी लाइफ उनसे बेहतर रही, तो वो आपको भी यही सजेशन देंगे कि आप भी वही बन जाओ। लेकिन अगर आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेते हो और एक तोते की तरह वही बातें रिपीट करते रहते हो जो आपने अपने घर में सुनी ओनली बिकॉज ऑफ सेफ्टी, तो आपकी लाइफ में इससे बड़ी गलती कोई नहीं होगी। आप खुद को मीडियोक्रिटी के दलदल से तब तक बाहर निकालना नहीं शुरू करोगे जब तक आपको ये आइडिया नहीं मिल जाता कि जो आम लोगों की एडवाइस होती है और ये जो आम लोगों का एक टिपिकल लाइफ पैथ होता है, ये आपकी पोटेंशियल को हैंडल नहीं कर सकता। लोग आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि क्यों आप वही लाइफ पैथ फॉलो नहीं कर रहे जो हर इंसान फॉलो कर रहा है, और क्यों आप मीडियोकर नहीं बनना चाहते, क्यों आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, क्यों आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। और यही लोग जो अपने एक्शन को डिले करते गए होते हैं और जो अपनी लाइफ में फेल हो गए होते हैं, यही लोग बोलते हैं the 30s आर द न्यू 20s। और जस्ट बिकॉज मैं उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं हूं जो आपको कंफर्टिंग लाइज देती है, और मैं ये बिलीव करता हूं कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, सच को बोल देना चाहिए और सच के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म में चाहे लोग आपको हेट करें और आपको बिल्कुल भी सपोर्ट ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग आपको प्यार करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज आप कभी भी बिके नहीं। और तभी आपके माइंड में ये माइंडसेट होने के बजाय कि 30s आर द न्यू 20s, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस माइंडसेट के ऑपोजिट चलो और खुद को ये बोलो दैट टीनेज आर द न्यू 20s, 20s आर द न्यू 30s एंड 30s आर द न्यू 40s। और अगर हम इनकम की बात करें तो खुद के मन में ये बिठाओ दैट 1 lakh इज द न्यू 10,000। जैसे अगर आप अभी 20 साल के हो तो काम ऐसे करो कि आप ऑलरेडी 30 के हो चुके हो और आपके ऊपर सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी आ गई हैं जो आपके पास 10 साल बाद आएंगे। और अगर आपकी इनकम 50,000 है तो उसे ट्रीट ऐसा करो कि ये तो बस 5,000 है। इस तरह से अपने स्टैंडर्ड्स को इतना ऊपर रखो ताकि आप मीडियोक्रिटी से बाहर निकल पाओ। कभी भी ये मत सोचो, कभी भी इस अकड़ में मत आओ कि जस्ट बिकॉज आपके आसपास के लोगों से आप किसी भी वे में बेटर हो या फिर इस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज है और सब ठीक रहेगा, आप सक्सेस को डिले कर सकते हो। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है हाउ द माइटी फेल, और उसमें यही बताया गया कि जब भी कोई बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगता है, तब क्यों वो थोड़े टाइम बाद कोलैप्स हो जाता है, क्यों ये यही सेम पैटर्न हिस्ट्री में बार बार देखा गया है। और बुक में ऑथर ने पहला रीज़न यही बताया है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। जो भी उस बिजनेस को चला रहा होता है वो सोच रहा होता है कि यार मैं तो टॉप पे हूँ, मेरे को कौन हटा सकता है यहाँ से, और तभी वो अपने प्रोडक्ट को बहुत स्लोली चेंज करता है। उसके पास कोई रीज़न ही नहीं होता जल्दी जल्दी इनोवेट करने का। और जो लोग यही सोचते रह जाते हैं कि अभी तो मैं आगे हूँ, वो पीछे रह जाते हैं और दुनिया आगे निकल जाती है। इसलिए अपने हर लिमिटिंग बिलीफ को क्वेश्चन करो, और जब भी आपके दिमाग में आता है कि मैं अपनी मीडियोक्रिटी से बाहर नहीं निकल सकता या फिर मैं उस पैथ के अलावा कोई दूसरा पैथ नहीं चुन सकता जो हर कोई जी रहा है, बिकॉज जो भी इस बिकॉज में आता है, जो भी आपकी रीजनिंग होती है मीडियोक्रिटी से बाहर ना निकल पाने की, उस चीज को तोड़ो, वो है आपका लिमिटिंग बिलीफ। सेकेंड स्टेप इज यूजिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू हैव टू गेट आउट ऑफ द रैट रेस। इस एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे मेरा कॉलेज छोड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेकिन हेल्पफुल डिसीजन था। और आप में से बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि यार इसके पेरेंट्स ने इसे ड्रॉप करने दिया, लेकिन अगर मैं अपने घर में ये बोलता था कि मेरे को कॉलेज छोड़ना है तो मेरे को मार पड़ती है। लेकिन आपको पता है क्या, तब बहुत कम दुख होता है जब आपको पता होता है कि आपके पेन का रीज़न आपके पेरेंट्स हैं, और तब बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आपको पता होता है कि आपके पेरेंट्स के पेन का रीज़न आप हो। बिकॉज आउट ऑफ फियर, जैसा कृष्णमूर्ति ने बोला, मेरे पेरेंट्स आइडेंटिफाइड थे मेरी अचीवमेंट से, तो अगर मैं कोई इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ तो ये चीज़ उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और पेनफुल थी। और इसी वजह से जब भी कोई उस टाइम पर रिलेटिव घर पर आता था और वो ये पूछता था कि सौरभ का कोर्स कंप्लीट हो गया, सौरभ ने BBA कर ली, तब वो आउट ऑफ शेम, आउट ऑफ फियर यही बोलते थे कि हाँ कंप्लीट हो गई। और मेरे किसी भी रिलेटिव को आज तक ये नहीं पता कि मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया था, और ये वीडियो देखकर उन्हें ये न्यूज़ मिलेगी। और अगर हम साइकोलॉजी इन हिंदी की बात करें तो ऐसा नहीं था कि मैंने पहली वीडियो डाली और वो वायरल हो गई और चैनल चल गया। एक से डेढ़ साल तक मैंने कंटिन्यूसली वीडियोस डाली और तब जाकर मेरे 1,000 या फिर 1,500 सब्सक्राइबर्स हुए थे। और साइकोलॉजी हिंदी से पहले मेरी एक वेबसाइट थी, उसके बाद मेरा एक व्लॉगिंग चैनल था, उसके बाद मेरा एक फिटनेस चैनल था और उसके बाद वीगनिज्म पे एक चैनल था। यानी साइकोलॉजी हिंदी जिस चैनल पर आप ये सुन रहे हो, ये मेरा 4th यूट्यूब चैनल है और इससे पहले 3 यूट्यूब चैनल फेल हो गए। इसका मतलब आपने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये प्रोसेस आसान होगा, बल्कि ये प्रोसेस टाइम के साथ साथ मुश्किल होता जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि टाइम के साथ साथ अगर आप इस गेम में अड़े रहे तो आप भी ज्यादा डेवलप होते जाओगे और आप भी ज्यादा केपेबल बनते जाओगे। आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप ना रो, आपको कोई पेन ना होए और आपके आसपास वाले कोई ना रोए और आपके आसपास वालों को पेन ना हो। ये सारी चीजें होंगी और आपसे बहुत लोग डिसअपॉइंट भी होंगे, लेकिन अगर आप इस गेम को एंड तक खेलते रहते हो और कभी भी गिव अप नहीं करते और एंड में इस गेम को जीत जाते हो, तो ये सारे सेक्रीफाइसेस, ये सारा दर्द जस्टिफाई कर लेगा खुद को। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे आपके पास दर्द है, उसे यूज़ करो। अगर आपके पास प्यार है, उसे यूज़ करो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नफरत है, अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, उसको भी यूज़ करो, वो भी एक एडवांटेज है। अगर आपको लोग सपोर्ट करते हैं, उसको भी यूज़ करो। हर चीज़ एक फ्यूल में बदल सकती है अगर आपके सही बिलीव्स हो तो, हर चीज़ आपकी एक अनफेयर एडवांटेज बन सकती है अगर आपके पास वो नज़र हो तो। स्टेप नंबर 3, रिवर्स इंजीनियर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। आपका गोल हेल्थ भी हो सकता है, आपका गोल पैसा भी हो सकता है, या फिर मे बी आप मेरी तरह और आपको लाइफ के हर फ्लेवर को चखना है। आपको अच्छे रिलेशनशिप भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, आपको अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है, आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, आपको सब चाहिए। जो भी आपका गोल है, इट डजेंट मैटर। आपको सबसे पहली इनसाइट अपने दिमाग में ये रखनी है कि वो गोल आपके लिए अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। यानी जो भी गोल है आपका, वो आपको बड़ा तो रखना है, और जो आपका गोल आप सेट करने वाले हो, वो आपकी करंट स्टेट से, करंट पोजीशन से बहुत ज़्यादा दूर भी होना चाहिए। लेकिन आपको डीप इनसाइट ये भी पता होना चाहिए कि जो भी वो गोल है, वो आप अचीव कर सकते हो अगर आप ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए तो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई काम होता है, हम उसे टाल रहे होते हैं, लेकिन डीप इनसाइड हमें पता होता है कि अगर हम उसे करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। तो गोल ऐसा होना चाहिए, और इसके बाद आपने ये सोचना है कि आपने अगले 10 साल में क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 10 साल बाद का गोल है कि आपकी इनकम होनी चाहिए 20 लाख पर मंथ, तो उसके बाद इस गोल को तोड़कर 5 साल बाद का गोल सेट करो। खुद से ये पूछो कि अगर 10 साल बाद मुझे 20 लाख पर मंथ चाहिए, तो उसके आधे रास्ते में, यानी 5 साल बाद मेरी क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए। एज अ रफ आइडिया, लेट से 5 साल बाद आपको 10 लाख पर मंथ पर होना चाहिए अगर आप अपना 10 ईयर गोल अचीव करना चाहते हो तो। इसके बाद ये सोचो कि आपको अगले 1 साल में किस स्टेज पर होना चाहिए अपने 5 ईयर गोल को पूरा करने के लिए। लेट से अगले साल तक आपको ट्रैक पर रहने के लिए हर महीने 2 लाख रुपए कमाने होंगे। ना हम इस 1 साल के गोल को और नहीं तोड़ने वाले, बिकॉज जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो तब उसमें मोमेंटम बिल्ड करने में समय लगता है, जिस वजह से शुरू के 3 से 4 महीने आपको कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली नई नई स्किल्स सीखते रहते हो, अगर आप अपनी मिस्टेक से फीडबैक लेकर खुद को बार बार इंप्रूव करते रहते हो, तो एक पॉइंट के बाद आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखने लगेगी। आपकी जो ग्रोथ है वो स्पीड पकड़ने लगेगी और प्रोग्रेस जल्दी जल्दी दिखने लगेगी। और इस पूरे टाइम पीरियड में जो 2 चीजें आपको कंसिस्टेंट रखेंगी, वो होंगी आपकी भूख, यानी आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना, और दूसरा एक सिंपल रूटीन जहां पर आपका 90% फोकस और 90% टाइम अपने जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला गोल है, बस उसी को अचीव करने पर जाता है। स्टेप नंबर 4, एक्टिव एंड पैसिव गोल्स। आपके जो भी गोल्स हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, एक्टिव और पैसिव। पैसिव गोल्स वो होते हैं जो हमारी ज्यादा अटेंशन डिमांड नहीं करते, वो हमारी ज्यादा एनर्जी डिमांड नहीं करते, और वो बैकग्राउंड में धीरे धीरे खुद ही पूरे हो रहे होते हैं। जबकि एक एक्टिव गोल वो होता है जो डिमांड करता है हमारी 100% अटेंशन, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। इसी वजह से एक टाइम पर आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही एक्टिव गोल हो सकता है। जैसे मेरी लाइफ के इस फेज में हेल्थ और फिटनेस मेरे लिए एक पैसिव गोल बन चुका है, जस्ट बिकॉज मैं सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ, सालों से अपनी बॉडी को स्टडी कर रहा हूँ, तो रोज मेरे को ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या खाना खाऊं, जिम में क्या वर्कआउट करूं, या फिर कौन सा फूड मैं बेटर डाइजेस्ट कर पाऊंगा। जस्ट बिकॉज मैंने इन सारी चीज़ों में सालों पहले इन्वेस्ट कर दिया, सारी एनर्जी दे दी, अब मेरे को पैसिवली रिवॉर्ड मिल रहा है और मेरी मसल पैसिवली बिल्ड हो रही है। मेरे को कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही इस चीज़ को। जब मेरी बॉडी बोल रही होती है कि उसे वर्कआउट चेंज करना है, तब मैं वर्कआउट चेंज कर देता हूँ, और मेरी डाइट 90% ऑफ द टाइम सेम ही रहती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ के इस फेज में मेरे रिलेशनशिप्स भी पैसिवली चल रहे हैं। मैं कोई नए दोस्त नहीं बना रहा, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो मेरी फैमिली है, उन्हें ऑलरेडी पता है कि जस्ट बिकॉज मैं अभी अपने बिजनेस पर काम कर रहा हूँ और वो मेरा एक्टिव गोल है, तो मैं उन्हें उतना टाइम नहीं दे सकता। हर दूसरा गोल एक्टिव गोल के नीचे आता है। चाहे आपके मल्टीपल गोल्स भी हों, लेकिन एक समय पर सिर्फ एक ही गोल को प्रायोरिटी दो, और कोशिश करो कि आप वो नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करो जिनकी मदद से आप अपने बाकी गोल्स को पैसिव बना सको, और वो धीरे धीरे खुद बैकग्राउंड में अचीव होते रहें। बिकॉज अगर आप अपने हर गोल को इक्वल अटेंशन देने की कोशिश करोगे, तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे कहावत भी होती है ना, इफ यू ट्राई टू चेस टू रैबिट्स यू एंड अप विद नन. स्टेप नंबर 5, व्हाट विल गिव यू एसिमेट्रिक रिटर्न्स. आपके काम को देखकर ही ये बताया जा सकता है कि क्या आप कभी रैट रेस से बाहर निकल पाओगे या फिर नहीं. क्योंकि अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह की लेवरेज नहीं है, जैसे अगर आप दूसरे लोगों को हायर नहीं कर रहे, या फिर आपके बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, या फिर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे लोग बार बार रीऑर्डर कर सकें, तो आपको अमीर होने में कई डेकेड्स लग जाएंगे. आपके पास टाइम लिमिटेड है, यानी आपके पास बस 24 घंटे ही हैं, और आप ज्यादा ज्यादा काम करके अमीर नहीं बन सकते हो. एक लिमिट है आपके ऊपर कि आप कितना काम कर सकते हो. इसके साथ ही आपके पास कैपिटल यानी मनी भी लिमिटेड है, और आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन सकते हो. इसके बजाय आपको कोई ऐसा मीडियम ढूंढना है जो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए बिना आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दे सके. जैसे एक समझदार इंसान पता है क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी दुकान को इस पोजीशन पर लाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं. लेकिन जो इंसान उससे भी ज़्यादा समझदार होता है, वो सोचता है क्यों ना मैं ऐसी और दुकानें खोल लूँ. और अगर उसकी दुकान लोकली पॉपुलर है तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है एक फ्रेंचाइज मॉडल में, ताकि उसकी मेहनत एक दुकान की लगे लेकिन उसके पास रेवेन्यू मल्टीपल दुकानों का है. इसलिए जो भी आपके पास बिजनेस आइडिया है, सबसे पहले यही क्वेश्चन करो, इज़ इट स्केलेबल. अगर वो स्केलेबल नहीं है, या फिर उसको स्केल करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगी, या फिर उसको स्केल करने में इतना बड़ा रिस्क है कि आपका सब जा सकता है, तो उस बिजनेस आइडिया को ड्रॉप करो. इवन अगर आप अभी एक जॉब भी करते हो, तब भी आपका लॉन्ग टर्म गोल यही होना चाहिए कि अगर आपकी इनकम कम है तो या तो एक दूसरी जॉब ढूंढो, या फिर कोई हाई इनकम स्किल डेवलप करो. और मेरे हिसाब से सेल्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर आप किसी और का प्रोडक्ट एक कस्टमर को बेचते हो और आप बीच में से कमीशन लेते हो. दिस इज द बेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड द फास्टेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ द रैट रेस एंड नॉट बीइंग एवरेज. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करो, अगर नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक करो, और कमेंट्स में बताओ कि मैं खुद को और इस चैनल को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. मिलते हैं अगले एपिसोड में.